دعا پر خداوند کی تعلیم، حصہ ایک، متی کی انجیل 6:1-15 آیت۔ خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارا باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور چوکوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرے دائیں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانے نہ بنو، کیونکہ تمہارے باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ہماری کلیسیا میں ایک بچہ بنام جن ووکم ہے، وہ نرالی بیماری کی وجہ سے تقریباً مر رہا ہے۔ جب وہ پہلی مرتبہ ہسپتال میں تھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر وجہ کو نہیں جانتے تھے، بس وہ پریشان تھے کیسے اس کا علاج کریں۔ ہم کچھ نہ کر سکے بلکہ بچے کو شفا دینے کے لیے خدا سے دعا مانگی، اور تب خداوند نے اچھے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے اس بچے کی رہنمائی کی۔ بس وہ اب زیادہ بہتر حالات میں ہیں۔ جب مشکل وقت ہمارے راستے میں آتے ہیں ہمیں یقیناً سب کرنا چاہیے جو ہم کرنے کا فرض رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یقیناً پہلے دعا مانگنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ متی کی انجیل 6:1 میں خداوند فرماتا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی راست باز زندگی میں دوسروں کو اپنی راست بازی نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ الفاظ دونوں وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے کے لیے ہیں۔ تاہم ہم راست باز لوگوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ خداوند نے فرمایا کہ اگر ہم راست بازی کے کام دوسروں کو دکھانے کے سلسلے میں کرتے ہیں، ہم بعد میں باپ سے اجر نہیں پائیں گے جو آسمان پر ہے۔ ہم آج کے صحیفہ سبق میں ایک مشترکہ موضوع پا سکتے ہیں، یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں اسے دوسروں کے سامنے اپنی راست بازی دکھانے کے سلسلے میں نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند فرماتا ہے کہ ہمیں اس پر اور اپنے دلوں میں اس کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے، اور پورے دل سے خدا کے سامنے راست کام کرنے چاہیے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دکھاوے کی بجائے اپنے دل سے کچھ نیک کام کرنے چاہیے، صرف تب خدا باپ ہمیں اجر دے گا اور ہم اجر حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ہی خدا ہمیں واپس ادا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہم صرف دکھاوے کے لیے ایمان کی زندگی گزارتے ہیں تو خدا اور خدا کی منظوری نہیں رکھے گا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کوئی شخص کچھ नेक काम करने की कितनी सख्त कोशिश करता है, तो वो मंजूर नहीं होगा अगर वो दिखाने के लिए किया गया है। तब क्या हर चीज जो हम करते हैं रियाकारी है? अगर दूसरे लोग इसे जान जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। आया इसे दूसरे लोग जानते हैं या नहीं? अगर कोई शख्स अपने ईमान की वजह से रास्तबाजी पर अमल करता है जो उसके ईमान के साथ की गई है, तो ये दिखावा तो नहीं है? हर चीज जो ईमान और ईमान रखने वाले दिल के साथ नहीं की जाती, रियाकारी है। कोई मायने नहीं रखता आया दूसरे लोग हमारे नेक अमाल देखते हैं या नहीं। मुख्तसर ईमान के वसीला से उसके सामने खुदा का कलाम पूरा करना हमेशा खुदा का मंजूर नजर है। लेकिन कोई भी चीज जो हम खुदा की बजाय दूसरों की मंजूरी जीतने के सिलसिले में करते हैं, दिखावा है। खुदा रियाकाराना ईमान को अजर नहीं देगा, और इसलिए हमें अपनी मजहबी जिंदगी में ऐसे ईमान से बचना है। हमें इस तालीम को जहन में रखना है जब हम खैराती काम या दुआ करते हैं। यह है कैसे वो हमसे दुआ मंगवाना चाहता है। मती के इंजील उसकी 6:5-6 में खुदा का कलाम फरमाता है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की माने ना बनो, क्योंकि वह इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना आदर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब हम दुआ मांगते हैं, हमें वाकई ही क्या जरूरत है, हमें दिल के साथ जरूर दुआ मांगनी चाहिए जो खुदा के सामने छोटे बच्चे की मानिंद आता है। ऐ खुदा, मैं ये नहीं रखता, मुझे ये अता कर। ऐ खुदा बाप, मैं मुसीबत में हूं, मेहरबानी से मेरी मदद कर। बच्चे के दिल के साथ दुआ मांगना इस तरह दुआ मांगना है, और ये मुमकिन है कि जब हम सादा ईमान रखते हैं। इसलिए जब हम दुआ मांगते या रास्त अमल करते हैं, हमें ये सब यही चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने दिल में ईमान रखते हैं। खुदावंद ने यह भी फरमाया, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मती की अंजील 6:6। जब हम खुदा से दुआ मांगते हैं तो हमें यकीनन खुदा से अपनी दुआएं मांगने के लिए अपने दिल की पोशीदा कोठड़ी में जाना चाहिए जो पोशीदा जगह पर है। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनता और हमें अजर देता है। जब हम सिर्फ खुदा की तरफ देखते और उसकी हजूरी में खुदा से मांगते हैं, दूसरे लफ्जों में जब खुदा से दुआ मांगते हैं तो हम खुदा से दुआ मांगते हैं जो पोशीदा जगह पर है, और इसलिए हमें दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पोशीदगी में दुआ मांग सकते हैं, बल्कि इसकी बजाय हम दूसरों को देखने के लिए दुआ नहीं मांगते, बल्कि हम दिल के साथ दुआ मांगते हैं, यानी हम खुदा से मांगते हैं क्योंकि हम वाकई ही अपने दिलों से चाहते हैं। आप बलाई सहीफा में सबक से क्या सीखते हैं? हमने सीखा कि खुदावन दिखावे से नफरत करता है, क्योंकि खुदा दिखावे को पसंद नहीं करता। बाज लोग इर्द गिर्द जमा होते और 3 मरतबा ऊंची आवाज में खुदावन चलाते हैं और पुलपिट पर गिड़गिड़ाते हैं और बहुत सारी आग में ये कहते हुए तौबा करते हैं, ऐ खुदावन मुझे बख्श, मैं गुनाह कर चुका हूं। लोग इस तरह चिल्लाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी वो गिरजाघर से बाहर जाते हैं वो हंसते हैं और एक लम्हे में चिल्लाते हैं, और तब दूसरे लम्हे में वो तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, शोरोगुल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी परस्तिश में हर एक जहन पागलपन की हालत में है। हत्ता कि एक अकलमंद शख्स महसूस करता है, क्या मैं पागल हूं? मैं महसूस करता हूं जैसे मैं उन लोगों को देखते हुए जो एक लम्हे में चिल्लाते हैं और अगले ही लम्हे हंसते हैं, और पागल हो रहा हूं। यह है क्यों लोग ठीक जहन और शऊर के साथ इस किस्म की गिरजाघरों में नहीं जाते। खुदा भी ऐसे लोगों से बहुत सबसे ज्यादा नफरत करता है, उनसे अपना चेहरा फेर लेता है, उन्हें रयाकार बुलाता है। तब कौन लोग हैं जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं और जो ही वो दुआ मांगते हैं और खुदावंद के साथ कुछ करना चाहते हैं। जितनी जल्दी वो घर आते हैं, ज़्यादातर ये लोग बदरू गिरफ्तार हैं अपने इबादत खानों में। हत्ता के रहनुमा बदरू गिरफ्तार गैर जुबानें बोलते हैं जिन्हें लोग नहीं समझ सकते। वो बाज़ औक़ात माइक्रोफोन के साथ आवाज़ की असरात इस्तेमाल करते हुए जोश और जज्बे के लिए अपने पैरोकारों को ये कहते हुए गरमाते हैं, आग हासिल करो, आग, आग, आग। वो लोगों को परेशान करते हैं, उनके आंसुओं के साथ दुआ मांगने के लिए रहनुमाई करते हैं और एक ही लम्हे में चिल्लाते और तब अगले ही लम्हे हंगामा अंगेज पागलपन में खुदावंद की तमजीद करने के लिए चिल्लाते हैं। ऐसे रवैया जात मसलन ये सब दिखावे के हैं जिन्हें खुदावंद की मर्जी के साथ कुछ नहीं करना है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि खुदा दिखावे को पसंद नहीं करता। सिर्फ ईमान के साथ खुदा को अपने दिल देने की मार्फत पूरे दिल से दुआ मांगना खुदा को खुश करता है। खुदा पहले ही जानता है किस किस्म के ईमान के साथ हम दुआ मांगते हैं। खुदा अपने सामने हमारी हकीकी दुआ सुनना चाहता है। हमें यकीनन अपने खुदावंद के सामने दुआ के लिए अपने रवैये तब्दील करने चाहिए। सब जो हमें करना है, ईमानदार बनना और सादा बनना और जो ही हम मांगते हैं, ऐ खुदावंद मैं ये नहीं रखता, मेहरबानी से मुझे ये अता कर। ये है क्योंकि हमारा ईमान काफ़ी मजबूत नहीं है, यानी हम बहुत सारे रंगीन जुमले इस्तेमाल करते हैं जो ही हम दुआ मांगते हैं। अगर हम खुदा के कलाम के बारे में सुनना जारी रखते हैं तो हमारा ईमान जो खुदा पर भरोसा करता है भी बढ़ता है। जो ही हम खुदा के कलाम को थामते और दुआ मांगते हैं, हम खुदा पर ईमान रखने में बढ़ते हैं और जो ही हम अपनी खता और दुआओं पर उसके जवाब हासिल करते हैं जो हमने ईमान के साथ मांगी, तो हम हत्ता के खुदा के ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और जो ही हम खुदा के बारे में ज़्यादा सीखते हैं, हम ईमान के शख्स बनने के लिए बाद में बढ़ते हैं। बस हम खुदा से ज़्यादा दुआ मांगने के लिए आते हैं और ऐसे शख्स बन जाते हैं जो सिर्फ खुदा से दुआ मांगता है। जब कभी हम दुआ मांगते हैं, बाज़ औक़ात हम खुदा से यानी मामलात में इत्तफाक से दुआ मांगते हैं। असल में मौके मौजूद हैं जो हम ऊंची दुआएं मांगते हैं, लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये दूसरे लोगों का हमारी दुआओं को सुनना नहीं है बल्कि खुदा का सुनना है। हकीकी दुआएं इस तरह सादा ईमान की दुआएं हैं, आए खुदा फला फला की मदद कर, चूंकि वो इस किस्म की हालत में है। फला फला को शिफा दे, फला फला को सेहत दे, फला फला को बरकत दे, चूंकि वो इस किस्म की हालत में है। मेरे नए सिरे से पैदा होने से पहले मैं बहुत सारे रंगीन जुमलों के साथ दुआ मांगा करता था। मसलन ऐसे, ऐ हमारे बाप जो पाक है और ऐ और रहम दिल और बरकत से भरपूर है, मोहब्बत और रहम के लिए तेरा शुक्र हो जो खुदा बाप हमें बख्शता है। मैं सब फूलों की किस्म की खास अल्फाज इस्तेमाल करता था जब कभी मैं दुआ मांगता था। कैसी दुआएं वाकई खुदावंद के सामने वो दुआएं हैं जो पोशीदा जगहों पर हैं। अगर हम वाकई मुस्तकिल इस तरह दुआएं मांगते हैं तो क्या खुदावंद सुनेगा? क्या हम वाकई बहुत सारी चीज़ों के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत रखते हैं? हम ऐसा नहीं सोचते। खुदावंद ने फरमाया, अपने आप को गैर कौमों या फरीसियों की तरह मत दोहराओ। क्या आप सोचते हैं कि मैं आपकी सुन सकता हूँ? सिर्फ अगर आप बहुत सारे अल्फाज कहते हैं, ये सच नहीं है। और उसने फरमाया, बस उसकी मानिन उनकी मानिन ना बनो, क्योंकि तुम्हारे बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। मत्ती की इंजील 6 और उसकी 8। ये वो दुआ है जो खुदावंद ने हमें मिसाल के तौर पर सिखाई कि हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए। खुदावंद की दुआ में ये हमें पहले गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ मांगने को फरमाती है। मत्ती की इंजील 6 उसकी 9 से खुदावंद हमें सिखाता है कैसे उसके नमूने की दुआ के साथ दुआ मांगनी चाहिए। यह है खुदावंद की दुआ सब क्या है। उसने फरमाया, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। अव्वल है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। इसका मतलब है कि हमें यकीनन दुआ मांगनी चाहिए ताकि खुदावंद का नाम पाक माना जाए। यहां उनको जो अब तक गुनाह की माफी हासिल नहीं कर चुके, यकीनन जानना चाहिए कि उन्हें यकीनन پہلے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسی دعا خاص دعا ہے جو خدا کے نام کو عزت دیتی ہے۔ اس لیے گناہ گار کو پہلے یقیناً یوں دعا مانگنی چاہیے، اے خدا مہربانی سے میرے گناہوں کو مٹا، مجھے خدا کا بیٹا بنا۔ یہ ہے کیسے انہیں پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ انہیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، مہربانی سے میری پانی اور روح کی خوشخبری کو سننے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے میں مدد کر، میری تیرے سارے کلام پر ایمان رکھنے میں مدد کر، میری خدا کے کلام میں سے ہر ایک اور ہر چیز کو سمجھنے میں مدد کر۔ یہ ہے کیسے انہیں پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ تاہم صرف ہم راز باز جو خدا گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں مناسب دعا مانگ سکتے ہیں اور مناسب زندگی گزار سکتے ہیں جو خداوند کی دعا کی پہلی سطر کو پوری کرتی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے۔ واقعی اگر ہم خدا کے نام کو داغ لگانے سے بچانا چاہتے ہیں اور پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً اس طرح خدا سے دعا مانگنی چاہیے، مہربانی سے مجھے ٹھوکر کھلانے والے پتھر اور تیرے نام کو داغ لگانے والے نہ بننے دیں۔ اپنی تمام زندگی میں ایمان کے وسیلہ سے ایک مقدس زندگی گزارنے کے لیے میری مدد کر، پاک زندگی گزارنے کے لیے میری مدد کر جو خدا کی راستبازی کے لیے ہے۔ ہمیں یقیناً ہر لمحے میں ہمیں پکڑنے کے لیے خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ جو ہی ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس نے ہم راست بازوں کو اپنی زندگیاں پاک گزارنے کے لیے پہلا دعائیہ موضوع عطا کیا تاکہ اس کا نام پاک مانا جائے۔ چونکہ گناہ گار خدا کو اپنے باپ کے طور پر نہیں بلا سکتے، انہیں پہلے یقیناً اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ مہربانی سے میرے گناہ مٹا دے، مجھے پانی اور روح کی خوشخبری کو سمجھنے کی اجازت دے جو تو نے مجھے عطا کی، مجھے تیرے فدیے کی سچائی کو جاننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہ کی معافی حاصل کرنے کی اجازت دے۔ خدا کے نام کو جلال دینے کی سلسلہ میں جس طرح خداوند کی دعا کی پہلی سطر ہے کہ ہر گناہ گار کو یقیناً پہلے گناہ کی معافی میں مدد کے لیے خدا سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں یقیناً دعا کی ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو زمین پر خدا کی بادشاہی کے لیے ہے۔ دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ تیری بادشاہی ہے، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ خدا کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہوگی۔ ہمارا خدا باپ نے ہمارے گناہوں ہمارے خداوند کو بھیجا اور خداوند کا بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے سب گناہوں کو مٹا دیا۔ اس لیے ہم اپنے دلوں میں رول قدس رکھتے ہیں اور خدا کی بادشاہت روحانی طور پر ہمارے دل میں ہے۔ تاہم پھر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے دلوں میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر چکے اور گناہوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہت ابھی ان کے دل میں۔ اس طرح انہیں یقیناً پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارا خداوند تقریباً 2000 سال پہلے دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے، اور جو ہی اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور مصلوب ہوا، تاہم پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ اسے نہیں جانتے اور ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ وہ بھی مکمل طور پر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ خدا ہر بنی نوع انسان کا واحد مالک ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ابلیس کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی خدمت کی بجائے اس کے خادموں کے طور پر زندہ رہتے ہیں۔ خداوند حقیقتاً ایسی تذلیل سے نفرت کرتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ اس کی ساری مخلوقات جنہیں وہ پیدا کر چکا ہے اس کے کلام پر ایمان رکھے، نئے سرے سے پیدا ہوں اور اس کے لوگ بن جائیں۔ اس لیے ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ خدا کی بادشاہی دنیا کے آخر اور اس کی 1000 سالہ بادشاہت کے آنے سے پہلے ہر کسی کے دل میں ہے۔ خدا ہم سے دعا منگوانا چاہتا ہے ہر شخص گناہ کی معافی حاصل کرے اور اس طرح تمام کائنات ایک بادشاہی بنے جس پر خدا حکومت کرتا ہے، اور یعنی یہ سب ہوگا اس لیے خدا ہم کو جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اس کی بادشاہت کی وسعت کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم راست باز لوگوں کو یقیناً خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ हमें जिंदगी की खुराक के लिए यकीनन ईमान की जिंदगी गुजारनी चाहिए। आए हम मत्ती की अंजील 6:11 पढ़ें, जो खुदा की दुआ में तीसरा दुआया मौजू रखता है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हमें यकीनन अपनी रोज की रोटी के लिए दुआ मांगनी चाहिए जो हम खाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी की रोटी के लिए भी खुदावंद से मांगना चाहिए। हमें दोनों अपने बदन और रूह के लिए रोटी लेने की जरूरत है। बस हमें यकीनन दुआ मांगनी चाहिए, हमें रोटी अता कर जो हम अपने बदन और रूह के लिए खा सकते हैं। हमें क्या मांगना चाहिए, साल भर के लिए या महीने भर के लिए नहीं है, बल्कि हमें मांगे हमें अपने जिस्म और रूह के लिए हर रोज क्या जरूरत है। प्यारे साथी मसीहो, हमें हर रोज अपनी रूहानी रोटी के लिए दुआ मांगने की जरूरत है। खुदा से जिस्म और रूह के लिए अपनी रोटी के वास्ते दुआ मांगना हमारे वास्ते गलत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं और यूं खुदा बाप से मांगने की मरात हासिल करते हैं। हमें जो कोई भी जरूरत है, इसलिए हमें तीसरी दुआया मौजू के मुताबिक भी दुआ मांगनी चाहिए। वो जो पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं, वाजह तौर पर वो लोग हैं जो खुदा की रास्तबाजी के लिए काम करते हैं, और यूं यकीनन दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा दुनियावी अशिया के साथ पानी और रूह की खुशखबरी के लिए काम को तरक्की से बरकत देने में मदद करे। राजबाजों के लिए खुदा की रास्तबाजी के लिए जिंदा रहना और पानी और रूह की खुशखबरी को मुनासिब तौर पर फैलने के लिए जिंदा रहना मुनासिब है। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा खुदावन के लिए दुआ मांगते हैं, बल्कि हमें यकीनन हर रोज ऐसे दुआया मौजूआत मांगने चाहिए। अगर हम खुदा से हमें रोज की रोटी देने के लिए दुआ मांगते हैं जो हमें जरूरत है, तो खुदा हमें जवाब देगा। जब हम अपने दिल के साथ दुआ मांगते हैं, तो हम खुदा की कलीसिया के अंदर जिस्म और रूह के वास्ते हमारे वास्ते खुदा की रोटी की इजाजत का तजर्बा कर सकते हैं। वह हमें ऐसी रोटी कसरत से देता है ताकि खुदा के खादमीन, उसके लोग और तमाम मसीह उसकी कलीसिया में इकट्ठे हो सकें और एक दूसरे के साथ इत्तफाक से रहें। जो ही वो खुशखबरी के लिए काम करते, तमजीद करते या खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद हमें हर रोज रूहानी रोटी देता है। जब हम उसके खादमीन वाज मुकस्सीन की गवाहियां सुनते हैं और हत्ता कि जब हम बजाते खुद कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं, हम राजबाज अक्सर खुदा का कलाम ज्यादा पढ़ने से अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में ज्यादा रोटी हासिल कर सकते हैं। हमारे दिलों में रुलकुदुस हमेशा खुश है और हमारी रूहानी काम के साथ मसरूर है जो खुदा बाप को खुश करता है। और हमारे दिलों में रुलकुदुस को क्या खुश करता है, हमारे लिए असल रोज की रोटी है। अगर हम हर रोज खुदा से दुआ मांगते हैं हमें रोटी दे और कोई काम नहीं करते, तो ये असल दुआ नहीं है। अगर आप खुदा से दुआ मांगना मांग चुके हैं, तो आपको यकीनन पहले पहल करनी चाहिए कि कैसे खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा और अपनी जगह पर बेहतरीन काम करें ताकि खुदा हमारे वसीला से काम कर सके। अगर हम पानी और रूह की खुशखबरी के लिए काम नहीं करते और खुदा से हमें रूहानी रोटी देने की उम्मीद करते हैं जब हम सिर्फ बैठे हुए, तो ये खुदा का तमस्कर है। हम अक्सर प्रस्तुषी इबादत के लिए खुदा की कलीसिया में जमा होते हैं। यह असल खाना है जो हम खा सकते हैं और महज कलीसिया में कलाम को सुनना नहीं है। उसकी मर्जी के मुताबिक खुदा का काम करना हमारे लिए असल रूहानी रोटी बन जाता है। अगर एक रास्तबाज शख्स गुनाह की माफी हासिल करने के बाद खुदा का काम नहीं करता, उसका ईमान जल्द ही या बाद में मर जाता है और वो खुदा की कलीसिया को छोड़ते हुए खत्म हो जाएगा। बाज लोग हत्ता के ईमान खो देते हैं जो खुदा की कामिल निजात की सच्चाई पर ईमान रखता। इसलिए हमें यकीनन अपनी रोज की रोटी हासिल करने के सिलसिला में पानी और रूह की खुशखबरी को फैलाने का रास्तबाज काम करना चाहिए। उनको जो ईमान के वसीला से रास्तबाज बन चुके हैं, एक दूसरे को माफ करने के काबिल होना चाहिए। मत्ती की अंजील 6:12 में यह लिखा हुआ है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। और ये खुदावंद की दुआ का चौथा मौजू है। हम इस चौथे दुआया मौजू को यूं कहते हुए गलत समझ सकते हैं कि हमें यकीनन हर रोज दुआ करनी चाहिए। हर रोज معاف ہونا چاہیے. تاہم یہ چوتھا موضوع ہر روز معاف ہونے کے بارے میں نہیں ہے. چوتھا موضوع شرطیہ ہے, کیونکہ ہم نے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سب ایک ہی بار خدا سے گناہ کی معافی کو حاصل کیا. ہمیں بھی یقیناً لوگوں کو معاف کرنے کی بدولت جو ہمارے قصور کر چکے ہیں خدا کی راستبازی کے لیے زندہ رہنا چاہیے. ہمیں ضرور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے جو ہمارا قصور کر چکے ہیں, بالکل جس طرح خداوند پاک اور خون پانی اور خون کے وسیلہ سے غیر مشروط طور پر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہے. خدا کے یہ الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کہ ہمیں یقیناً دوسروں کی غلطیوں کو ہم سے مٹانا چاہیے, چونکہ خدا ہمارے سب گناہوں کو معاف کر چکا ہے. تصور کریں ہم $500 ملین کا قرض رکھتے ہیں, جو پیسے کی ایسی بڑی رقم ہے جسے ہم واپس ادا نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ اگر ہم اپنی ساری زندگیوں میں کام کرتے. ہم میں سے ہر ایک کے گناہ کی مزدوری اتنی ہی رقم ہوگی, لیکن خدا نے ہم پر ترس کھایا اور غیر مشروط طور پر ہمارے گناہوں کا قرض کاٹ دیا, یہ کہنے کی بجائے میں اسے ادا کرنے کے لیے سوچوں گا. خدا باپ نے اپنا بیٹا بھیجا, اسے بپتسمہ دلوایا, دنیا کے گناہ اٹھوائے, مصلوب کروایا, اس لیے اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی اور ہمیں یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے بچا لیا. یہ ہے کیسے خداوند نے اس کے گناہوں کی معافی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے قرض کو کاٹ ڈالا. ہم نے گناہ کی معافی گناہوں کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کرنے کے وسیلہ سے حاصل کی, بلکہ صرف سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل کی. ایمان کے وسیلہ سے جو ہم رکھتے ہیں, ہم نجات کی بخشش اور خدا کی طرف سے اپنے تمام گناہوں کی پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں. چونکہ یسوع نے $500 ملین کا قرض, جو ہم اپنی تمام زندگی میں سے کافی واپس ادا نہیں کر سکتے تھے, اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے چکا چکا ہے. ہمارے گناہ کچھ بھی نہ کرنے کے وسیلہ سے, بلکہ صرف اس کے فضل کے وسیلہ سے کاٹ دیے گئے تھے. اب ہمیں یقیناً چھوٹے قصورواروں کو ختم کرنا چاہیے جو دوسرے ہم سے کر چکے ہیں. ہمیں یقیناً ایک دوسروں کے لیے معافی کی تکمیل پر زندہ رہنا چاہیے. دوسرے راست باز لوگوں اور گناہگاروں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے جو دوسروں کے ساتھ کر چکے ہیں. ہمیں خداوند کی خوشخبری کے مطابق ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے مقروض ہیں, لیکن خداوند اس دنیا میں آیا اور بپتسمہ جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا اور اپنے خون کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. خداوند نے ہمارے گناہوں کو اور ہماری بے بسی کو دیکھا, بس اس نے اپنی طرف سے ان سب کو مٹا ڈالا. کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ ہم راست باز نہیں ہو سکتے, حتیٰ کہ اگر ہم نے اپنی زندگیاں اس لیے وقف کیں, اس نے پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالا. خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا, اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اس پر ڈالا, مصلوب ہوا, جی اٹھا اور ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچا لیا. یوں یسوع مسیح ہمارا ابدی نجات دہندہ بن گیا, جس نے ہمیں ہمارے ابدی گناہ سے بچا لیا. ہم خداوند سے جو زندہ ہے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مل چکے ہیں. کیا آپ اپنے دل میں اپنے ذاتی نجات کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں, کیا ہم ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں کہ یسوع نے پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا؟ ہاں, تب چونکہ ہم حیران کن فضل کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں, ہمیں غلطیوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے جو دوسرے ہم سے کر چکے ہیں. خداوند کی دعا کا چوتھا موضوع ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. اس دعا پر عمل کرنا ہے جس کا خداوند نے ہمیں حکم دیا, ہماری روحانی زندگی کا مناسب طریقہ ہے. یہاں خداوند کی دعا کے چوتھا حصہ میں ہمیں کیا واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ کی دعائیں مانگنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں. بعض اس حوالہ کو دیکھتے ہیں جو فرماتا ہے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور کہتے ہیں کہ اس پر نظر کرو, تم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہو جب تم तौबा की दुआएं मांगते हो। लेकिन यह सूरतयाल नहीं है। ऐसा मुलाकात उनकी पानी और रुकी खुशखबरी पर गलतफहमी की वजह से। यह क्षेत्र ठीक ठीक फरमाती है कि उनको जो पानी और रुकी खुशखबरी के वसीला से गुनाहों की माफी हासिल कर चुके हैं, एक दूसरे को माफ करना चाहिए, एक दूसरे की खामियों को ढांपना चाहिए। किसी इंसान के गुनाह महज उन्हें होंठों से माफ करने की बदौलत मिट नहीं सकते, बल्कि एक शरई फिदिये की, एक बेदाग शरी जानवर की हाथों के रखे जाने के वसीला से गुनाहों को मुंतकिल करने और उनके इफ़्ज़ी मौत की ज़रूरत है जो गुनाहों की मजदूरी अदा करती है। यीशु मसीह दुनिया के तमाम गुनाहों को उठाने के वसीला से हमारा बाहमी माफ़ी के तमाम तकाज़ों को मुकम्मल कर चुका है। इसलिए अपने ईमान के वसीला से जिसने हमें गुनाहों की माफ़ी बख्शी, हमें यकीनन एक दूसरे की गलतियों को काटना चाहिए, मिटाना चाहिए और यूं ही हमें जिंदा रहना चाहिए। हमें यकीनन दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा हर रास्ता में हमारी हिफाजत करे। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 13 आयत में कलाम फरमाता है, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। आजमाइश का मतलब है मुश्किलात में पड़ना है। बस हमें आजमाइश में न ला का मतलब है कि परेशानी और मुश्किल में गिरने से हमें रोकने के लिए दुआ मांगना है। जब हम खुदा बाप के सामने दुआ मांगते हैं, हमें यूं दुआ मांगनी है, ऐ खुदा बाप, मुझे मुश्किलात में पड़ने ना दे, मेरी हर खतरनाक हालत में हिफाजत कर। ऐ खुदा, मेहरबानी से मुझे बरकत दे, मुझे गलत होने से बचा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुनियावी माल रखता हूँ या काफ़ी माल नहीं रखता। मुझे शरीरों से बचा और मुझे उनकी आजमाइशों में मत गिरने दे। हमें यकीनन अक्सर आजमाइश में ना गिर पड़ने देने की दुआ मांगनी चाहिए। हमें यकीनन एहतियात से पहली दुआ से लेकर 6ठी दुआ तक हर रोज़ दुआ करनी चाहिए। अगर एक शख्स आजमाइश में पड़ जाए तो ये जहन पर बोझ बन जाता है और वो मरते हुए ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें यकीनन खुदा से हर रोज़ मुश्किलात में ना पड़ने की दुआ मांगनी चाहिए। मजीद बरा, हमें यकीनन खुदा की कलीसिया में भाइयों और बहनों के साथ ईमान और सच्चाई की शराकत रखने के वसीला से अपने दिलों में मुश्किलात से बाहर निकलना चाहिए। खुदा की कलीसिया नए सिरे से पैदा हुए मसीहों के दरमियान शराकत की एक अजीम जगह है। उन लोगों के दरमियान पुरखलूस और सच्ची शराकत रखना मुमकिन नहीं हो सकता जो अब तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए। ताहम खुदा की कलीसिया में इतने सारे लोग शराकत रखने के लिए मौजूद हैं जितने आप चाहते हैं। और जब आप किसी के साथ शराकत रखने की कोशिश करते हैं तो आप किसी के साथ ऐसा करना बेहतर रखते हैं जो आपसे ज़्यादा थोड़े आला रूहानी मेयार पर है। यह है क्योंकि ऐसे अशखास अपने रूहानी इल्म और तजर्बात को आपके साथ तफसील से बांट सकते हैं। जो हकीकत पसंद और काबिल बर्दाश्त हैं, हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो हमसे बात करने की बदौलत ईमान की रूहानी रोटी खाने को इसे आसान बनाते हैं, और वो हमसे इस तरीके से ताल्लुक रख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारी ज़ाती हालत की मानिंद है। उन लोगों के लिए ईमान के वास्ते ज़्यादा खुराक मौजूद है जो आगे हैं। ताहम अगर हम किसी के साथ शराकत रखते हैं जो ईमान में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, चूँकि वो हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा सख्त रूहानी खुराक बांट सकते हैं। इसका मुआवजना हो सकता है जब हम पहली बार बाइक को चलाना सीखते हैं। एक बच्चे का अच्छा उस्ताद जो अभी बाइक चलाना सीख रहा है, उनके बड़े बहनों या भाइयों में से होगा जिन्होंने उनके वालदैन की बजाय सवारी को पूरी तरह महारत भी हासिल की है। एक शख्स जो उस मियार पर वजाहत कर सकता है जिसे बच्चा बेहतरीन तौर पर समझ सकता है, ऐसा शख्स है जो उसी चीज़ में से महज गुजर चुका है। अगर एक बाप छोटे बच्चे को सिखाने वाला था कैसे बाइक चलानी है, तो वो एक बड़ी बाइक ला सकता है जो उसके मियार पर है और बच्चे का दिल तोड़ सकता है जो सीखने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा अपने बड़े बहन भाइयों की एक छोटी बाइक चलाते हुए देखने की बदौलत तेज़ी से सीख सकता है। इस सोच के साथ हौसला अफजा हो सकता है कि मैं इसे ज़्यादा कर सकता हूँ। बड़े वालदेन बच्चे की हकीकी हदायत के साथ मदद कर सकते हैं। वालिद साहब की बड़ी बाइक बच्चे को मदहोश कर सकती है, जो अपने बाप से हत्ता के बाइक पर चढ़ने से पहले इसे सवारी के लिए सीखता है। ईमान में शराकत, हमारी शराकत के साथ ऐसा ही है। वो शख्स जो हकीकी तरीन और हकीकी के मामला और हमारे मियार पर हकीकी अमराह में कदम ब कदम ईमान में हमारे बढ़ने में मदद कर सकता है, ऐसा शख्स है जो अभी इस रास्ते पर से गुजर चुका है। शराकत सबसे ज्यादा फायदेमंद है जब ये ऐसे शख्स के साथ है जो मुझसे पहले फौरन उसी चीज में से गुजर चुका है। हमें यकीनन पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान के साथ हमेशा हमें आजमाइश में ना पड़ने दे और हमें बचा कर रख और हमें बुराई से बचा। दुआ मांगनी चाहिए। सबसे बड़ा खतरा हम पर शरीर के हाथ में है, यह है कि हम हत्या के एहसास नहीं करते कि हम खतरे में हैं। ये कितना खतरनाक है, इसलिए हमें यकीनन दुआ मांगनी चाहिए कि हम शरीर के हाथों में ना पड़े, यानी खुदा हमें शरीर से बचाता है। और अगर आप महसूस करते हैं कि आप आजमाइश में हैं, अपने ईमान के साथ जितनी जल्दी मुमकिन है उतनी ही जल्दी इसमें से बाहर निकलें। मत्ती की इंजील 6:14-15 फरमाती है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। हमें यकीनन एक दूसरे को माफ करना चाहिए। हकीकत के मामला के तौर पर वो जो नए सिरे से पैदा हुए हैं माफ करने में अच्छे हैं, ताहम हत्ता कि हम राजबाज लोगों के दरमियान क्या मुश्किल तरीन हिस्सा है किसी को माफ करना है। शायद यह है क्यों हमारे खुदावन ने इसे यहां दोहराया है। क्या आप आसानी से माफ करते हैं या नहीं जब आप दूसरों के कसूर, गलतियां और कमजोरियां देखते हैं? क्योंकि बाज अशिया अटल हैं। हम अपने दिलों में जख्मी हो सकते हैं लेकिन हम आसानी से माफ करते हैं। जब दूसरा शख्स वाकई तौबा करता है, वो क्या कर चुके हैं और अपने दिल से रजू लाता है, तो कुछ नहीं है कि हम माफ ना कर सकें। जब वो वापस आते हैं और अपने रवैये को तर्क करते हैं, तो कुछ नहीं है कि हम कबूल ना कर सकें। ताहम बहुत सारे मौजूद हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। वो जो आजमाइश में और बुराई में पड़ते हैं उन्हें माफ करने की बजाय दूसरों को आजमाइश में डालते हैं। इसलिए हमें यकीनन मुश्किलात और हालात की वजह से जिनमें हम हैं दूसरों को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। वो जो अपने साथी ईमानदारों को परेशान करते और खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं यकीनी तौर पर तबाही में खत्म हो जाएंगे। हमें यकीनन अपनी मजहबी जिंदगी को अपना ईमान दिखाने के लिए नहीं गुजरना चाहिए। लंबी कहानी को मुख्तसर करने के लिए आया ये ठीक है या गलत है, हमें खुदा के सामने इस पर गौर करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, अगर हम अपने दिलों के साथ एहसास करते हैं कि हम गलत कर चुके हैं, सब जो हमें करना है इसे मानना है और यूं कहते हुए तस्लीम करना है कि ये गलत था। अगर हम माजरत के अल्फाज या माफी या गलतियों को तस्लीम करना सुनते हैं जो वो कर चुके हैं, अब हमें यकीनन अपने दिलों से नाराजगी खत्म करनी चाहिए और माफ करना चाहिए। यीशु ने फरमाया, बल्कि तुम्हारा कलाम हां या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। मत्ती की इंजील 5:37। हम वजाहत या बहाने की जरूरत नहीं रखते। वाहि शायद जो हमें करनी है इसे खुदा के सामने ख्याल करना और अपनी गलतियों को मानना है अगर कोई कसूर हो चुका है। जब हम एक भाई से पूरी कहानी सुनते हैं, अगर वो गलत है, सब जो हमें करने की जरूरत है उसे बताना है ये गलत है और उसके लिए उसे तस्लीम कराना है, और सब जो उसे करने की जरूरत है कि खुदा के सामने इन बातों पर गौर करना और खुदा की तरफ देखना है जो अपने बपतिस्मा और सलीबी खून के साथ हत्ता के इन कसूरों को मिटा चुका है। और फिर ईमान पर डटना है। जो कोई गलती हम कर चुके हैं, हमें महज खुदा की रास्तबाजी पर ईमान पर डटने की और खुदा का शुक्र करने की जरूरत है जिसने हमारे गुनाहों को मिटा डाला, और तब मुस्तकबिल में बेहतर करना है। खुदावंद की दुआ का खुलासा। हमें यकीनन पहले दुआया मौजू के मुताबिक दुआ मांगनी चाहिए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, एक गुनाहगार के लिए जो अब तक नए सिरे से पैदा नहीं हो चुका। दुआ का पहला हिस्सा, तेरा नाम पाक माना जाए का मतलब दुआ मांगना है कि खुदा गुनाह की माफ़ी हासिल करने में मेरी मदद कर, ताकि मैं खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। लेकिन हमारे वास्ते नए सिरे से पैदा हों के लिए जो गुनाह की माफ़ी पहले ही हासिल कर चुके हैं, इसका मतलब ये दुआ मांगना है कि हमारी मुनासिब ज़िंदगी और रास्तबाज ज़िंदगी गुजारने के लिए मदद कर जो खुदा को जलाल देगी और उसी तरीके से ज़िंदा भी रहेगी। ताहम उनको जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, यकीनन पहले अपने गुनाह की माफ़ी के लिए दुआ मांगनी चाहिए ताकि वो खुदा को जलाल दे सकें। इसलिए रासबाज को यकीनी दुआ मांगनी चाहिए, मसलन मेहरबानी से मुझे पाक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे, मेहरबानी से मुझे ईमान की ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे, मेहरबानी से मुझे तेरे नाम को दाग ना लगने की इजाज़त दे। एक गुनाहगार के साथ चलना रास्तबाज शख्स के तौर पर मुकम्मल मिलकर काम करने के सिलसिले में उनके ईमान को मंजूर करना खुदा के सामने ना शुक्रगुजार रवैया है जो खुदा के नाम को धब्बा लगाता है। हमें यकीनन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यकीनन उनके खिलाफ लड़ना चाहिए जो खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं। उनके साथ सुलह करना, उनके साथ शराकत रखना एक बड़ा गुनाह है जो खुदा के खिलाफ है। इसलिए उनके साथ इत्तफाक से ईमान के साथ खुशखबरी के लिए काम करना जो ईमान रखते हैं रास्त अमल है। गुनाहगारों के साथ अपने दिलों को हमांग करना बुराई में पड़ना और खुदावन पर दाग लगाना है। हमसे क्या हो गया अगर हम एक सिपाही के साथ काम करते हैं जो हमारे मुल्क में अहम मालूमात चुराने के लिए आता है। यह हमें उस सिपाही की मानिंद बुरा और गद्दार बना डालेगा जो अपने मुल्क को बेचता है। यह एक ऐसा काम है जो एक गद्दार करता है जो नहीं जानता कहां उसे ताल्लुक रखना चाहिए और अपने जाती मुल्क को बेचने के लिए दुश्मन के साथ साजिश करता है। ऐसा बड़ा गुनाह है जो सजाए मौत से बच नहीं सकता। खुदावंद की दुआ की दूसरी सतर यह है कि तेरी बादशाही है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और यह रास्तबाजों का उन जानों के लिए दुआ मांगना है जो अब तक गुनाह की माफी हासिल नहीं कर चुकी हैं। यह दुआ मांगना है कि खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी हो। तब खुदा की मर्जी क्या है? मर्जी यह है कि हर जिंदगी गुनाह की माफी हासिल करे। हमें यकीनन इसके साथ मदद देने के लिए भी उससे दुआ मांगना चाहिए। हमें यकीनन कारकुनों और दुनियावी अशिया के लिए दुआ मांगनी चाहिए और तब हम सबको अपने आप को उसका काम करने के वास्ते खुदावन के लिए फ़ख्र करना चाहिए। हमें यकीनन सब अपने आप को और अपने फ़ख्र को और कोशिश को और इसी तरह हर चीज़ को जो हमसे ताल्लुक़ रखती है फ़ख्र करना चाहिए ताकि ज़मीन पर खुदा की मर्ज़ी पूरी हो। हमें यकीनन काम करने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए जो हर किसी के गुनाह की माफ़ी के लिए रहनुमाई करेगा। हमें यकीनन उसके लिए हर रोज़ दुआ मांगनी चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी अपने दिल और हकीकत में बदन देने के लिए वसीला से ज़मीन पर पूरी हो। बाज़ लोग गुनाह की माफ़ी हासिल करने के बाद खुदावंद की नसीहत को नज़रअंदाज करते हैं जो उसने हमें खुदा की बादशाही के लिए दुआ मांगने के वास्ते सिखाएं। अगर एक शख्स जो गुनाह की माफ़ी हासिल कर चुका है खुशखबरी को फैलाने के लिए दुआ नहीं मांगता, ये इस मकसद के लिए खुदा की कलीसिया के साथ मुत्तहद नहीं होता, तब वह एक बुरे आदमी की नसीहत पर बैठा हुआ है। इस किस्म के इंसान को खुदा की तरफ से जिस्म और जान के लिए बरकतें मुतवक्का नहीं करनी चाहिए। इसलिए हकीकत में वो रास्तबाज लोग जो जिंदा नहीं रहते और खुदा की रास्तबाजी के लिए दुआ नहीं मांगते, खुदा की मर्जी से बाहर रहे हैं और खुदा की मर्जी के साथ मुतहद नहीं है। हमें यकीनन हर रोज अपनी रोज की रोटी के लिए दुआ मांगनी चाहिए जो तीसरा दुआया मौजू है। हमें रोटी दे ताकि हम भूखे ना मरे। हमें जिस्म और रूह के लिए रोटी दे। हमारे कारोबार को बरकत दे ताकि हम खुदा का काम कर सकें। हमें पानी और रूह की खुशखबरी की खिदमत करने के सिलसिले में उसकी फराहमी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। यह दुआ का तीसरा हिस्सा है। दुआ का चौथा हिस्सा यह है कि हमें यकीनन दूसरों को माफ करना चाहिए जो हमारा कसूर कर चुके हैं, बिल्कुल जिस तरह खुदावंद ने पानी और रूह के वसीला से, खून के वसीला से हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। हमारे खानदान में भाइयों और बहनों के दरमियान जो गुनाह की माफी हासिल कर चुके हैं اور خدا کے مرد و خواتین خادم خادمین کو ہمیں یقیناً ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، بالکل جس طرح خداون نے ہمارے تمام گناہ مٹا دیے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو دوسرا شخص کو ماننا چاہیے، ہاں میں غلط ہوں۔ تب ہمیں اپنے دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر میں اس کے بارے میں مزید نہیں بولتا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب آسانی سے معاف کریں گے، اور یہ ہے کیوں آپ اب تک وفاداری سے زندہ رہ چکے ہیں۔ کیا اب ایسا نہیں ہے؟ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، یعنی ہم مشکلات میں نہ پھنسیں، اور یعنی خداوند ہمیں محفوظ رکھے گا۔ دعا کا چھٹا حصہ ہمیں برائی سے بچا۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے شریروں کے ہاتھوں میں نہ پڑیں اور ان میں گرفتار نہ ہوں، یعنی خدا میں ہمیں شریروں سے چھڑائے گا جب ہم شریروں کے ہاتھ میں ہیں۔ تب خداوند نے فرمایا، ہمیں یقیناً ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ راز باز لوگوں کو یقیناً ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم راز بازوں کو یقیناً ہمیشہ اس طریقے کے مطابق دعا مانگنی چاہیے جو خداوند نے ہمیں دعا مانگنے اور اس پر ایمان رکھنے کے لیے سکھائے۔ ہمیں یقیناً ایسے موضوعات کے لیے ہر روز دعا مانگنی چاہیے۔ مزید برآں، ہمیں یقیناً ہر روز اسی طریقے سے زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے آزمائش میں یا برائی میں نہ پڑنے کے لیے، روز کی روٹی کے لیے، زمین پر خدا کی بادشاہی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ نہ صرف یہ، ہمیں یقیناً ایسے ایمان کے وسیلہ سے وفادار زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً ان حصوں کے لیے ایک دعائیہ زندگی گزارنی چاہیے جن میں ہم خدا کو جلال دینے کے سلسلہ میں کم پڑتے ہیں، ایسا شخص جو ہمیں خداوند کو سکھانے کے مطابق ہر روز دعائیں مانگتا ہے۔ مرد ایمان ہے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، اگر ہم آج کا صحیفہ یا حوالہ ان کے لیے لیتے ہیں جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اور ان کی مختلف طور پر تشریح کرتے ہیں، تاہم جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے اس حوالے کو لیتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اب تک جو میں نے کہہ چکا ہوں غلط نہیں بلکہ درست ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں۔ پہلے دعائیہ موضوع جو وہ ان سے فرماتا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، یہ ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ تاہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا ہم شاید ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اس کے نام کو جلال دیتی ہیں، خدا کے نام پر دھبا تو نہیں لگاتی؟ کیا آپ اور میں وہ لوگ ہیں جو 100% بھلائی کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ اگر ہم خداوند کے جلال نہیں دے سکتے تو خداوند کے نام پر دھبا بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی کلیسیا کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ واسطے ٹھوکر کھلانے والے پتھر بننے کی بجائے ہمیں یقیناً عزت کرنی، محبت کرنی، متحد ہونا اور اس کی کلیسیا کے ساتھ اور اس کی خدمات کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ خدا کا نام پاک مانا جا سکے۔ پیارے ساتھی مسیحو، ہمیں یقیناً واقعی بھائیوں اور بہنوں کے لیے، مرد اور خواتین خادموں کے لیے، خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے، ایسی زندگی کے لیے جو خدا کے نام کو داغ نہیں لگاتی اور اپنی روز کی روٹی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً ہر کسی کو اپنے دل سے معاف بھی کرنا چاہیے جو ہمارا قصور کر چکا ہے، بالکل جس طرح ہمارے خداوند نے ہمارے تمام گناہ مٹا دیے۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ ہم مصیبت میں نہ پڑیں۔ آئے ہم دعا مانگیں کہ ہمارے دل آزمائش کا شکار نہ ہو۔ اگر کلام کو نہیں سنتے تو ہمارے دل آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور مصیبت میں گر جاتے ہیں۔ جب ہم کلام کو، روحانی روٹی کو نہیں سن چکے تو ہمارے دل خیر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب ایسا ہوتا ہے ہم آزمائش میں اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، ہمارے جسمانی خیالات ابھرتے ہیں اور روحانی خیالات کو قابو کر لیتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے، چونکہ ہم جو اپنے راست باز لوگ ہیں جسم کی 100% خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، ہمارے دل مصیبت میں क्योंकि हमें जिस्म और रूह के दरमियान आगे पीछे जाना है, इसलिए हमें यकीनन ऐसे हालत में ना पड़ने पर तवज्जो देनी चाहिए। रूहानी सेहत के लिए तैयारी करने के सिलसिले में हमें यकीनन खुदा की कलीसिया में आना और कलाम को सुनना चाहिए। अलावा अर्ज़ इबादत के दौरान कलाम की मुनादी कौन करता है? कलाम के हर हफ्ते खुदा की कलीसिया में मुनादी की जाती है। हत्ता कि अगर कोई ख़ास एहसास मौजूद नहीं है तो हम कम से कम जबकि कलाम को सुनते हैं वे फजूल अशिया से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ खुदा का कलाम सुनने की बदौलत जिस्मानी ख्यालात की गंद और कसूरों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह जब पानी की एक नदी बहती है, पानी गंदा नहीं रहता, बैरूनी अशिया पानी के साथ बहती हैं और नदी साफ हो जाती है। जब हम कलाम को सुनते हैं तो कलाम पानी के लिए रास्ता खोलता है और हमारे दिलों की गंदगी से छुटकारा दिलाता है। और जो ही ये बहता है, जब हम जिस्मानी ख्यालात से छूटते हैं तो नई रूहानी ख्यालात उभरते हैं और खाली जगह पर कब्जा करते हैं। इस तरह हमारा जहन महफूज और हिफाजत में रहता है। इसलिए हमें यकीनन इतनी कसरत से जितना मुमकिन है मायना करना चाहिए। आया हम किसी दुआया मौजूआत के नज़रअंदाज तो नहीं कर चुके जो कलाम मुकद्दस में लिखे हुए हैं? अगर कोई चीज़ मौजूद है जिसमें हम नज़रअंदाज कर चुके हैं तो हमें यकीनन अभी उसे रोकना चाहिए। हमें यकीनन उन हिस्सों के लिए दुआ मांगनी शुरू करनी चाहिए और इन हिस्सों में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यह है क्यों हमारे खुदावंद ने फरमाया हमें इसे नहीं दिखाना चाहिए। जब हम दुआ मांगते हैं हमें चंद मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे दुआ मांगनी चाहिए सिखाया है। खुदावंद की दुआ में हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। यह जाहिर करती है कि कैसे हम एक दुआया जिंदगी गुजार सकते हैं। हकीकत में दुआ के पहला हिस्सा का पहला ही हमारे लिए जवाब मिल चुका है। दुआ के पहले हिस्सा में गुनाह की माफ़ी पूरी होती है, लेकिन अब हमें यकीनन दुआ मांगनी चाहिए ताकि हम एक मुकद्दस जिंदगी गुजार सकें। इसलिए हमें यकीनन कलाम को सुनना चाहिए और पाकिजगी को कायम रखने के लिए हर रोज़ खुशखबरी को फैलाना चाहिए ताकि हम वो लोग ना बने जो खुदा के जलाल में रुकावट डालते हैं। उनमें से हर एक शख्स बनने से बचने के सिलसिला में जो खुदा के जलाल में रुकावट डालता है। हमें यकीनन हर रोज़ हमें महफूज रखने और हमें बरकत देने के लिए खुदावंद से दुआ मांगनी चाहिए। ना सिर्फ हमारे जिस्मानी बदनों को खाना है बल्कि हमारी रूहों को भी खाना है। राजबाज लोगों के लिए जो अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी हासिल कर चुके हैं, कलाम का सुनना, दुआ मांगना उनकी रूहानी खुराक हो सकता है। लेकिन हकीकत में क्या वाकई उनके लिए रूहानी खुराक खुशखबरी को फैलाना भी है? और अगर ये कलाम को सुनना और उसे अपने दिलों में कुंद करना रोकती है तो ये वो खुराक नहीं हो सकती जो अच्छी सेहत बख्शती है। क्या आला किस्म के अज्जा खुराक हैं जो वाकई हमारे दिलों को सेहत बख्शते हैं? वो ईमान है जो अमल करता है। जब हम दिल से कलाम पर ईमान रखते हैं और उस ईमान पर अमल करते हैं तो ये वाकई हमारा ईमान बन जाता है, और यानी हम ईमान में मजबूत खड़े हो सकते हैं और यानी हम रूहानी तौर पर पूरे बन जाते हैं। इस तरह आला पाए के ज़रूरी अज्जा खुराक हमारे पूरे बदन में फैलते हैं और हम ईमान के लोगों के तौर पर बढ़ सकते हैं। अगर कोई बदकार परेशानियां पैदा करता है तो हमें यकीनन मुत्तहिद होना और बदी को धकेलना चाहिए, और अगर कोई हमारे दरमियान शरीर के हाथों में गिर जाता है तो हमें यकीनन उसकी मदद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। हमें यकीनन मुत्तहिद होना और यूं दुआ मांगते हुए अपने आप का दिफा करना चाहिए। ऐ खुदा, मेहरबानी से शरीर की तरफ से इस रूहानी तूफान को रोक दे। मेहरबानी से हम में से हर एक की मदद करें। हमें यकीनन दुआया मौजूआत के बारे में सोचना चाहिए जो नज़रअंदाज हो चुके हैं, और अगर वाकई ही कोई हिस्सा मौजूद है जहां हम नज़रअंदाज हुए हैं तो हमें यकीनन रुजू लाना चाहिए और एक रास्तबाज ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खुदावंद ने हमें एक दूसरे को पकड़ने और एक दूसरे से मोहब्बत करने, हौसला अफजाई करने और एक दूसरे की तकलीन करने की नसीहत की। जैसे जैसे खात्मा नज़दीक आता है, हम रास्तबाज लोग लोगों को जो नए सिरे से पैदा हुए हैं यकीनन ईमान के साथ अपने दिलों को भरना चाहिए और एक दूसरे को खींचना चाहिए, एक सखी और शफीक दिल उंडेलना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है और उसके हालात का फ़ायदा उठाने के बजाय हमें यकीनन अपने आप को उसके हालात में रखना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि उसकी मुसीबत ख़त्म हो जाए। ये हमें खुदा के लोगों के तौर पर क्या करना चाहिए, हमें यकीनन उसके बारे में अपनी ज़ाती मुसीबत के तौर पर सोचना चाहिए और ऐसे ख्यालात के साथ बाहमी अमल करना चाहिए। मसलन ये किस तरह होता है कि अगर ये मेरे हालात होते तो मुझे क्या करना चाहिए, हत्ता कि अगर दूसरा शख्स अमल नहीं करता जिस तरह हम कर रहे हैं, एक रास्तबाज जिंदगी नहीं गुजारता ताकि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। तो हमें यकीनन दुआ मांगनी चाहिए और उम्मीद के साथ उसको कबूल करना चाहिए कि वो रुजू लाएगा। चूँकि हम बहुत सारी खामियों रखने वाले इंसान हैं, हम अक्सर नाकाबले बयान खौफनाक गलतियाँ करते हैं, हत्ता कि तब चूँकि खुदा हतमी अदालत का मुनसिफ है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है अगर हम कलाम को थामने की वसीला से रुजू लाते हैं जिसने खुदा पर ईमान के साथ हत्ता के ऐसे गुनाहों को मिटा दिया था। यह है क्योंकि अगर खुदा फरमाता है कि ये कुछ नहीं है तब ये कुछ नहीं है। हमें यकीनन ईमान के अंदर एक दूसरे को कबूल करना चाहिए जो खुदावंद के दिल पर ईमान रखता है, जिसके वसीला से हम सब कबूल होते हैं। अलावा अर्ज ये है, हमें यकीनन खुदा पर मुतरजन हलका में भी हतमी फैसला करना चाहिए, खुदा के गिरदा गिर्द मुर्तजात दुआ मांगनी चाहिए, खुदा के गिरदा गिर्द मुर्तजात जिंदा रहना चाहिए और खुदावंद की दुआ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें वो कमज़ोर ईमान वाले नहीं होना चाहिए जो मामूली तौर पर दुआ खुदावंद की दुआ को समझते हैं, बल्कि ईमान के साथ वो लोग बनना चाहिए जो एक दुरुस्त जहन रखते हैं, जो दुआ में ईमान पर अमल करते हैं। यह है जब हम सब वो बन जाते हैं जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से खुदावंद की दुआ के मुताबिक ज़िंदा रहते हैं। मैं खुदा का काफ़ी शुक्र अदा नहीं कर सकता जो हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदा रहने में बे इंतहा मदद देता है। आमीन।